शुद्ध करो, श्वास त्याग कर दूसरों की सेवा करो। मैंपन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? तो पहले ये समझना है कि मैंपन में अशुद्धि क्या है, क्योंकि अशुद्धि का पता लगेगा तभी ना शोधन करोगे, शुद्ध करोगे। मैंपन में अशुद्धि क्या है कि इसमें एक तो अभिमान है, एक स्वार्थ बुद्धि है, ये दो अशुद्धियां हैं इसमें। ऐसे कई बातें हैं इसमें, मुख्यता से दो अशुद्धि है, अपने को बड़ा मानना, दूसरों को साधारण मानना, वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, विद्या को लेकर, बुद्धि को लेकर, अधिकार को लेकर, किसी बात को लेकर के जो अपने में अधिकता का आरोप है ना, ये अहंता में अशुद्धि है। क्यों? कि संसार में सब एक धातु बने हुए, एक धातु से बने हुए हैं। खिद्र पावक गण समीरा पंच रचित अधिक शरीरा, तो पांच भौतिक सृष्टि है सब, उसमें शरीर स्थूल शरीर है, सूर शरीर है, कार शरीर है, वे भी शरीर उतने ही धातु से बने हुए हैं जितने दूसरों के हैं। दूसरों के शरीर जिस धातु से, उसी धातु से अपने शरीर बने हुए हैं। तो इसमें अधिकता का अपने में भान होना इसका कारण क्या है? सोचो इस बात को, और अभी समझ में आओ तो अभी प्रश्न कर लेना, बीच में प्रश्न करने का मैं निषेध करता हूँ, परंतु ये आज बात कहता हूँ। ठीक है, समझ कर बोलना, बिना समझ समय बर्बाद मत करना भाई। समझ करके ये बोलो कि ये जो समान रीति से तत्व देखा तो परमात्मा सब में परिपूर्ण एक है, प्रकृति देखी जाए तो सब प्रकृति से बने हुए संसार प्राकृति एक है, और शरीर से देखा जाए तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर एक है। ये सब एक समान होते हुए एक जगह अपने को अधिक मानना, किसी वर्ण को, आश्रम को, परिस्थिति को, किसी पद विशेष को, अधिकार को लेकर अपने में अधिकता मानना, वो क्या है? अब सर को ये जो क्या कहा, तो अहम का है, अहम भाव है। जो ये अहम भाव क्या है कि इसमें एक स्वीकृति है, स्वीकृति स्वरूप नहीं होती। हमने एक पद स्वीकार कर लिया, जैसे बोलने का हमने विचार किया भी यहाँ पर मैं बोलूंगा, तो बोलना मैंने स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार किया है ये केवल व्यवहार के लिए, अभिमान के लिए नहीं। मैं बड़ा हो गया, आप छोटे हो गए, इस बात को लेकर स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति है कर्तव्य पालन करने के लिए। अपने को मैं बोलने वाला मानता हूँ तो केवल बोलना मेरा काम है, इसमें बड़प्पन का अभिमान करना ये अशुद्धि है। और बोलना तत्परता से, ठीक तरह से बोलना जिसमें सबका कल्याण हो, अपना भी दुनिया का, ऐसा बोलना ये कर्तव्य है, अभिमान को जगह नहीं है। घर में कई आदमी होते हैं, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई सामान ही लाता है, तो कोई रसोई बनाता है, तो कोई नौकरी करता है, तो कोई अपनी फैक्ट्री चलाता है, अलग अलग काम करते हैं, मन अलग अलग का सब समन्वय एक में होता है। वो घर का काम कर रहे हैं, जैसे हमारा शरीर है, एक शरीर इस शरीर में पैरों से चला जाता है, हाथों से लेन देन होता है, जुबान से बोलना होता है, आंखों से देखना होता है, कानों से सुनने वाला सुनना होता है, ये जो अलग अलग इंद्रियों के व्यापार है, अलग अलग काम करते हैं, सब मिलकर के शरीर का निर्वाह करते हैं। इसमें अभिमान की कोई बात नहीं कि सुनने का अभिमान न कि आंख का है न कान के लिए, कोई अभिमान की बात नहीं है। केवल अपने अपने जिम्मेवारी को काम करना, सुनना काम कान रहा है भाई, सुनना काम देखना काम आंख रहा है, चखना काम जीभ का है, कर्मेंद्रियों में चले तो चलना फिरना काम पैरों का है, लेने देने का काम हाथों का है, बोलने का काम जबान का है, आदि आदि इंद्रियों का काम अलग अलग है। तो ये अलग अलग काम है वास्तव में काम करने के लिए, न कि अभिमान करने के लिए, वो काम उसने करे वो जिम्मेवारी है। तो ऐसे अपने स्वीकृति को कर दे, कोई जिम्मेवारी कर दे, तो कर्म निवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचित्, कर्म में अधिकार है फलों में कभी नहीं, ये कहा। तो कर्तव्य कर्म करना अपना काम है, पर उसका अभिमान करना तो काम करना ही है ना, क्योंकि अभिमान क्या करे, कभी वो काम करता है कभी भोजन करता है, तो भोजन करने वाला मैं हूँ, अभिमान किस बात का, भोजन कर लो भाई, जल पीने वाला मैं हूँ, अच्छी वजह पी लो। जिस समय जो काम करना है उस काम में ही सीमित रहना है ना, ये अहंकार को शुद्ध करना है। अगर उसी को पकड़ लिया, जैसे मैं बोलता हूँ तो हर समय ये है कि मैं तो वक्ता हूँ, ये सब श्रोता है, मैं समझाने वाला हूँ, ये समझने वाले हैं, मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये पढ़ने वाले हैं, तो हर समय में भी वो अभिमान बना रहेगा, तो वो अभिमान परमात्मा के तत्व की प्राप्ति में बाधक होगा, क्योंकि वो हरदम अभिमान बना रहे ना। अभी हरदम क्या अभिमान लग रहा है, ये तो काम है, बोल रहे हैं उसे बोलेंगे, जो सुनने का काम हो वो सुनाएंगे, हम सुनेंगे वहां श्रोता बढ़ जाएंगे। तो ये काम तो करने का है, इसमें एक बात को पकड़ करके अभिमान करने का नहीं है, एक बात करके अपने में जो विशेषता का आरोप करना है, ये अभिमान है, अभिमान में दोष है, इस अभिमान को दूर करना है, ये अशुद्धि है इसमें। इसलिए से कोई काम पड़े तो हमारा मतलब कैसे सिद्ध हो, हमारे को पैसे कैसे मिले, हमारे को भोग कैसे मिले, हमारे को सुख कैसे मिले, हमारा आदर कैसे हो, हमारी प्रशंसा कैसे हो, दूसरे जाए चूल्हा में परवाह नहीं पड़े, हमारा काम कैसे बने, ये है स्वार्थ बुद्धि। तो ये मैं परम में अशुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि अशुद्धि है, अभिमान अशुद्धि है। ऐसे इसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, काम है, क्रोध है, सब अशुद्धियां हैं। मैं पर्ण है ये, तो मैं पर्ण में ये अशुद्धियां है, तो इस अशुद्धियों को मिटाने का नाम है शुद्धि करना। तो वो आम को शुद्ध कैसे करें, तो आम को शुद्ध करें इनको मिटावे, तो मिटावे कैसे भाई, सुगम रीति क्या है इसकी, तो सुगम रीति है कि सुख दूसरों कैसे हो, आराम दूसरों कैसे हो, आदर दूसरों का कैसे हो, महिमा दूसरों की कैसे हो, लाभ दूसरों को कैसे हो, हित दूसरों का कैसे हो, ऐसा मन में पर हित बस दिन के मन माही, दिन का दुख सुनाही, पर हित सरस धर्म न भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहे दूसरों को पीड़ा देंगे तो वो तो बहुत नीचता हो जाएगी, तो इसके समान कोई नीचता है ही नहीं, तो दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, उनसे भी बढ़ करके हित करना, कल्याण करना सबका, ये हमारे बस में है। तो हमारे से किसी काम कर दिया तो उसका एहसान मानना चाहिए, जैसे मैंने बातें सुनाई और आपने उनको सुना और सुनकर आपने मान लिया तो मेरे पर आपने कृपा की, मेरा कहना सफल हो गया और आपने मेहरबानी की। अगर नहीं माने तो मेरे पास कोई जोर है ऐसा, राजी का जो कैद करा देगा आपको और कुछ कर दे, माने न माने स्वतंत्र हैं आप। तो बात कहने से आपने मान लिया तो हमारा कर्म काम करना सफल हो गया, इस वास्ते को ठीक है, अच्छी बात है। और नहीं मानो तो अपना जी आपकी स्वतंत्रता है, बिल्कुल हमारा कोई दबाव नहीं कि आप मानो ही ये बात। क्यों माने साहब, आपकी बात हम मानने को पूरी तैयार हो तब हम कहेंगे आप मानो, तब भी नहीं कहना चाहिए। वास्तव में और की बात अच्छी माननी चाहिए, पर अपनी बात मनाने का आग्रह नहीं करना चाहिए। हम आग्रह कैसे करें कि हमारी बात श्रेष्ठ है, हमारी बात श्रेष्ठ हमारे लिए है, आपके लिए थोड़ी हुई, आपके लिए आप श्रेष्ठ मान तो मानो, आप श्रेष्ठ हम तो नहीं मानते इसको, अच्छा मत मानो भाई। तो ये अभिमान है ना भीतर में, ये एक एक स्वार्थ है, ये दो दोष बड़े दोष है काम में। तो कैसे दूर हुए कि सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका आराम, सबका आदर कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबको धन कैसे मिले, सबकी उन्नति कैसे हो, सब पदान्वित कैसे हो जाए, दूसरों का हित हो जाए। तो ये दूसरों का हित हो जाए, ये बात वास्तव में है। तो इसमें क्या होगा कि अशुद्धि मिटेगी। एक बात याद आ गई, शुरू में बहुत पुरानी बात है, उसमें म्यूनिसिपालिटी क्या थी, उसमें कुछ वोट लेना था, कुछ बनना था। तो उसमें एक तो शेर जी खड़े हुए, शेर जी को बहुत आदमी ने कहा कि आप खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, वो तो नहीं कहा, शेर जी सीधे दयाल थी, इनको बहुत कहा। वो कहते भाई हमारा मन नहीं है कि नहीं आप आ जाओ, ये लोग आ जाएंगे आपके द्वारा दुनिया का हित ज्यादा होगा। तो कहने खड़े हो गए, खड़े हो गए सामने कोई होशवार था जैन, उसके सामने अपनी बात ज्यादा बताई। तो शेर जी का आप व्याख्यान दो, तो व्याख्यान दिया कि जो मेरे को वोट देने वाले हैं इन होशवार को देखो, सभी वोट इनको देखो।
फिर क्या हुआ
महाराज, फिर उसी रीत हुई, क्या क्या हुआ,
ऐसा क्यों किया शेर जी,
हमारे से बनना ही नहीं है बड़ा। अभिमान के त्याग में आपको उदाहरण दिया कि अभिमान कैसे छूटे, अभिमान छूटे दूसरों का हित करने से, दूसरों के लाभ करने से अपना अभिमान छूटता है, अपने स्वार्थ करने से अपना अभिमान कैसे छूटेगा, अभिमान भी बढ़ेगा। पूरा इतिहास मैंने सुना नहीं, बहुत पुरानी बात है, अभी बहुत वर्षों से शेर जी के पास मैं हूं रहा हूं, तो काफी वर्षों में इस बात में पहले की बात सुनी पुरानी। वास्तव में अभिमान है ना, ये है इसमें दोष, एक स्वार्थ बुद्धि दोष है, फिर काम और क्रोध लोभ और मोह और ईर्ष्या द्वेष और पाखंड ऐसे पैदा होंगे इस अहंकार जड़ में। जैसे महाराज वर्ण आता है ना, राजा बताओ मेरे वो है नी नल, तो नल राजा की बात आती है तो नल में कलयुग प्रवेश हो गया था, प्रवेश हो गया था कलयुग, तो नल नल को बनवा नल बने जंगल में चला गया था। तो वो भाई से पुष्कर भाई था, उसे जुआ खेला, उसे मारा दिया, तो उसने सब राज्य ले लिया, सब संपत्ति ले ली और कह दिया कि हमारे राज्य में कोई पानी भी इनको ना पिलावे, ऐसे कर निकाल दिया नल को। तो निकल चला गया बेचारा, चला गया तो वास्त्री है जो साथ में रही दमयंती, वो कहते मैं तो आपके साथ रहूंगा रहूंगी। तो नल महाराज ने कहा कि तुम अपने पीछे चले जाओ, मेरे कष्ट के दिन है, इस वास्ते ले जाओ। तो चलते चलते जहाँ उनके पीर का रास्ता है, ये तुम्हारे पीर का रास्ता है, तुम इधर से ले जाओ और मैं इधर जाओ। वो रो पड़ी और वो कहा कि मैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आराम के लिए आई हूँ आपके पास में, क्या सुख के लिए आई हूँ मैं आपके पास, कैसे ले जाऊ, मैं तो आपकी सेवा में रहूंगी, मैं तो साथ ही चलूंगी। तो साथ में ले लिया, परंतु नर ने देखा कि मैं कष्ट सह सकता हूँ, इतना ये सह नहीं सकती, कैसे रह सकेगी, इतना कोमल इनका शरीर है, कोमल स्वभाव है, राजा महाराज की बेटी थी, मामूली चीज थी नहीं, तो कैसे करे। तो एक धर्मशाल मिली, उस धर्मशाल में रात्रि में सो गए, सोए थे तो सोते सोते इसको नींद नहीं आई, खड़ा हो गया। एक एक साड़ी रहेगी महाराज, एक धोती ही इनके पास, एक धोती उसके पास साड़ी के पास, तो दोनों के पास एक एक कपड़ा था। अगर ही गए तो कर क्या करे, तो चार हंस मिले, उन हंसों के पकड़ने को नहीं, उसने कहा कि मैं इनको देखना चाहती हूँ, पकड़ो पकड़ो, जो उन पर धोती फेंकी वो धोती ले उड़ गए, तो एक ही रह गई। तो एक धोती दोनों के बंधी हुई थी, एक धोती दोनों लज्जा निवारण के लिए, पुरुष नहीं बांधती स्त्री नहीं बांधती। ऐसी अवस्था में गए तो धर्मशाला में सोए, वहां धर्मशाला में सोए तो बड़ा दुख हुआ धर्म को, ये दुख पाती है और स्त्री के दुख से दुखी हुए। तो वहां कोई तलवार पड़ी थी, उस तलवार को लेकर के उन्होंने साड़ी काट दी, आधी साड़ी आपने रख दी आधी उसी साड़ी पर रख दी और वहां से चल दिया। वो नींद रखी जाए, नींद खुली तो देखा तो है ही नहीं, वो कहाँ गए कैसे हो, पकड़ो जाओ, मिलाप किया पर नल तो रहा नहीं, वो पागल सी हो गई, नल रह गए वहां से। तो निकल गए, फिर बहुत कुछ बात आती है इतिहास की, वो भी मेरे के लिए घूमते रही, बड़ी दुखी हुई। तो उसको एक अजगर ने पकड़ लिया, अजगर उसको पकड़ के खाने लगा, तो एक बधिक था शिकारी, उसने अजगर को मार दिया, अजगर को मार करके इसको निकाल दिया, स्नान करा दिया। वो तो उसका मन हो गया खराब, दमयंती सुंदर बहुत थी, इंद्र अग्निदेव और वरुण ये भी आए थे उसको मरने के लिए, बहुत सुंदर थी, महाराज नर भी बड़े सुंदर थे। तो उसका मन खराब हुआ, तो उसने कुछ अपनी बात दृष्टि रखी ऐसी, तो भस्म हो जाता तो मर गया भाई साफ दे देने से, फिर गाड़ी गई की लंबी सोच बात है। अब वो आपस में पड़ी थी तो उनके पिता को, दमयंती के पिता की चिंता हुई, तो उसने ब्राह्मणों को इनाम कहा कि हमारे बेटी और जवाई की कोई पता लगा ले उस हम इनाम देंगे। तो ये है जो नर घूम रहा जंगल में, तो एक कर्कोटक नाम का सांप था, वो चल रहा, अगर दवा नहीं लगी हुई भीष्म पड़ा था, तो उसने कहा भाई मेरे को निकाल दो, मेरे को नर जी का सांप हो गया तो मैं चल नहीं सकता, पड़ा हूँ, अगर आग आ जाएगी जल जाऊंगा, तो मेरे को यहाँ से निकाल दो, कृपा करो। तो नर ने उसको ले लिया, कंधे पर उठा लिया, उठा करके चले, तो कहा गुणो कितने कदम आप मेरे जो मैं बदला चुकाना चाहता हूँ, तो कितने कदम आप चलोगे। तो उसने कदम गिरा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस कहा गया काफी हो, अरे क्या जहर कोलकाता का बहुत तेज जहर था, काट गया। तो कहते कि कैसे कर गया, तो आपने काम दस दस तो दस दस था दस तो दस तो दशा 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 तुम कहने दस जाओ दस दर्शन है, तो दस तो दस था दस काम दर्शन तू दस दस था दस तुम दस तुम दस दस या वो संस्कृत में दस दस नाम दस जाओ ये सोचा। तो तुमने कहा दस जाओ, जो मैं डस गया, तुम घबराओ मत, मैं जान करके डसा हूँ। अब जहर इतना आ गया महाराज, शरीर को से छोड़ गया, शरीर फिर वो काला काला हो गया, शरीर वो रूप नहीं रहा जहर के कारण से। तब कहा तुम्हारे को तकलीफ नहीं होगी, कलजू तुम्हारे में प्रवेश किया, उस कलजू को जहर चलेगा, वो फिर कलजू चलता रहा, जब तक नल में रहा तब तो उस जहर से चलता ही रहा, उसको जहर तुम्हारा असर नहीं होगा। फिर दिया एक कपड़ा, ये कपड़ा ले जाओ और इसको पास में रखो, जब तुम्हारा ठीक करना हो तो कपड़े पर स्प्रेगा, जिस पास वही स्वरूप हो जाएगा पहले वाला। तो वो चला गया, फिर वो अयोध्या के ऋतुपर्ण नाम राजा थे, अयोध्या के वहां पर गया, उसने कहा कि नाम मेरा नाम बाहुक, बाहुक नाम धर दिया, छोटे छोटे हाथ थे, बाहु नाम धरा, कोई वहां किस मरेगा तो घोड़ों पर रखा, तो कह उसे घोड़ों की विद्या मैं जानता हूँ, घोड़ों को ऊपर से रखा गया अफसर। अब ऐसी बात वहां तो वो रह गया, दमयंती है जो अपनी एक मासी थी उनके यहाँ पर रह गई जाकर के, तो रह गई क्या वो बिलवारी, एक साड़ी से कोई पूरी नहीं और दुख पा रही थी, तो उसको देखा राजरानी ने, राजरानी ने देखा तो उसको बुला लिया, बुला लिया फिर कि तुम कौन है कैसी बात, वो अपना परिचय नहीं दिया, तो उनकी लड़की थी उसके साथ कहा कि तुम सहेली हो, आपस में एक सहेली हो, साथ साथ रहा करो, और अपनी कन्या को कह दिया कि इसको तुम पास में रखना, इसको दुख न हो, आराम से रखना सब तरह से, और कोई पुरुष का भी संग न हो, इसे रख दिया। अब वहां वो रहने लगी, तो पिता ने जब कहा पूछने के लिए, तो महाराज सब जगह ब्राह्मण निकले, तो एक ब्राह्मण बहुत भोजन करते थे वहां, तो वो ब्राह्मण भी आ गया उस दिन दमयंती के यहाँ, तो उसने वह भोजन किया देखा, तो रणवास में गए तो दमयंती को देख लिया, देख लिया तो उसने ब्राह्मण ने पहचान लिया कि हमारे महाराज की राजकुमारी है, ये पहचान लिया, तो देखा तो उसके यहाँ एक चिन्ह था लाल, उसने वो मैल के कारण से दिखता नहीं था, तो उस ब्राह्मण ने पहचान लिया, पहचान करके उसे बात करती थी एकांत में, उसने कहा मेरी बात करनी है, बात करनी है, तो उसने मासी ने देख लिया, तो मासी ने कहा कि कैसे दूसरे पुरुष के साथ कैसे बात कर रही हो, तो उसने परिचय दिया, तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हमारे राजा की राजकुमारी है, मैं उनको ढूंढने के लिए आया हूँ, मिली है, ऐसी बात सुनी तो उसको पता लगे ये तो मेरी भांजी है, खास मेरी बहन की बेटी है, तो कह बेटा तुम सुनंदा ना हुआ, उसी लड़की थी उसके साथ रही, तो बेटी मैंने मेरे को पता नहीं तेरे को ऐसा रखा, फिर खूब आदर से रखा, और फिर बड़े रिवाज में साथ ही घोड़ा दे साथ में लेकर के और राजा के पहला उसको दमयंती को। अब दमयंती तो मिल गई, अब पता नहीं लगा दमयंती का हमारे प्राणनाथ कहाँ है पता नहीं, तो लगा तो कहीं पता लगा ही नहीं, तो एक ब्राह्मण निकले वहां से, तो उसका पता कैसे लगाया जाए, तो ब्राह्मण ने एक बात करी, पिता ने कह दिया, दमयंती ने कहा, दमयंती कहने से ब्राह्मण ने कहा कैसे खोजोगे, तुम खोज नहीं सकते, उनका पता लगा नहीं सकते, तो पता कैसे लगाओ कि तुम जहां जाओ वहां जाकर कहो, तो वहां से कोई आदमी पहुंच न सके ऐसा समय दो कि दमयंती विवाह कर रही है, अपना वर ढूंढती है, तो अब इसी समय जाओ, ऐसा कोई आ नहीं सके ऐसा समय बताओ। तो वो पहुंचा वो अयोध्या में, अयोध्या में पहुंचा कर दमयंती स्वयं कर रही है, तो उसमें जाओ, तो उसमें जाने में कई दिन लगे, अरे कल तो सुबह दिया ऐसा कल ही, तो ऋतुपर्ण की बड़ी चिंता हुई, मैं जाऊं तो सही पर कैसे पहुंचूं, चिंता हुई, तो उसने पूछा बाहू ने क्या बात है कैसी बात है, कि पहुंचा तो मैं दूंगा आज ही पहुंचा तो मेरे को जल्दी पहुंचा हुआ, कैसी बात है, बड़े अच्छे से घोड़े लाए लोगों का, कि ये घोड़ा मेरा नहीं, मैं तो मेरे तुम करके घोड़ा लूंगा, वो लूंगा, एक घोड़ा नहीं लूंगा मैं, अच्छा तुम ले आओ, थके माने से घोड़े है उनको दे करके फैल, चलो आप तो बैठे, तुम्हारा घोड़ा इस देर से चला, जोर से घोड़ा हुआ रफ चला, तो रफ चला तो कह रहे रफ चला जाए, राजा ने कह रहे मेरे दुपट्टा गिर गया, कि तो वो स्वामी दे दूर अब चला गए, आगे जाते इतना जोर से रथ चलता जिसमें एक बहेड़े का वृक्ष था, उस बहेड़े के वृक्ष के ऋतुपूर्ण राजा ने कहा इतने तो इसके पत्ते हैं, इतने इतने फल है, इतने गिरे हुए इतने फल है इसके, तय लिया मैंने, तो उसने उसने रथ को बंद कर दिया, खड़ दिया कि मैं गिरूंगा, ये गिरो ठीक वैसे निकला, ऐसी विद्या है तो वो बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा आप मेरे को विद्या बताओ, तो उसकी विद्या देखी घोड़ों की, तो घोड़ों की विद्या तुम बता दे, तो अब आज चलो कि बहुत देरी हो जाएगी। वो कुछ देर नहीं से आ गए, पास नहीं अंदर ही गया, गांव आ गया, वो हम पहुंचे तो वो बहेड़े का एक रूख था लेने में, उस वक्त में कर्जुग वहां से उससे निकला और बहेड़े के वृक्ष में प्रवेश कर गया। इस बात बहेड़े के वृक्ष छाया में कर्जुग रहता है, तो बहेड़े छाया में कर्जुग रहता है, ऐसे अहंकार की छाया में संपूर्ण आशु संपत्ति रहती है। अहम की छाया में, अहम अभिमान है, इसकी छाया में सब रहते हैं, जितने बोस जितने आशु संपत्ति सब रहती है। तो अभिमान मिट जाएगा तो ये मिट जाएगा। निर्मोह निरहंकार है शांतिपति की स्थिति, निर्मोह निरहंकार संतु का सुख क्रमी, तो निरहंकार होने से पति मिलता है। तो ये इसमें दोष मुख्य, नारायण नारायण नारायण, तो इस अहंकार को दूष करो कि शुद्ध हो जाएगा अहंकार, वो अभिमान छोड़ करके दूसरों का हित करो।
राम, यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भादवा शुद्धि त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 3 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीना सरधुरा पर हुआ। राम